अगले दिन उनकी शादी थी। रात को आन्या सो रही थी। जुली शिकार के लिए जंगल गई थी। आन्या को नींद में उस दिन जो हुआ था वो सब नजर आने लगा। आखिर में जब वो बेहोश हुई थी, वो याद आते ही उसकी नींद खुल गई। एक बार फिर वही सपना, और इस बार उसने सब देख लिया था। वो परेशान हो गई और बाहर निकल गई। घर में सभी सारे दिन की थकान से सो रहे थे। वो घर के बाहर अकेली बैठी थी। कुछ देर बाद जुली शिकार से लौटी। आन्या को कमरे में ना देखकर वो परेशान हो उठी। उसे ढूंढते ढूंढते बाहर पहुंची तो आन्या गेट के पास वाले चबूतरे पर बैठी एकटक आसमान को देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। जुली ने उसके पास आकर बैठते हुए कहा, मिस आन्या, आप यहाँ इस वक्त ऐसे क्यों बैठी हैं? आवाज़ सुनकर आन्या ने निगाहें घुमाकर उसे देखते हुए गंभीरता से कहा, कुछ पूछूं? सच सच जवाब दोगी? हाँ, पूछिए। जुली उसके चेहरे को गौर से देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके दिमाग में क्या चल रहा है। आन्या कुछ पल खामोशी से उसे देखती रही, फिर एकदम गंभीर होकर बोली, क्या मैं भी तुम सबके तरह एक वैम्पायर हूँ? उसका सवाल सुनकर जुली स्तब्ध रह गई। वो परेशान निगाहों से उसे देखने लगी पर कोई जवाब नहीं दे सकी। आन्या ने उसे खामोशी से देखा तो फिर से कहा, सच सच बताना, मैं इंसान नहीं, एक वैम्पायर हूं ना? जी, जुली ने बस इतना ही जवाब दिया। आन्या के चेहरे पर अब भी कोई भाव नहीं था। वो भावहीन सी खाली निगाहों से आकाश को देखने लगी। दूसरी तरफ अन्वय को आज बेचैनी हो रही थी। जब वो सोने की कोशिश करता तो आन्या का उदास परेशान चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता। जब से आन्या को छोड़कर आया था उससे बात तक नहीं हुई थी। आधी रात का वक्त था, अचानक ही उसके कानों में आन्या की आवाज पड़ी, जैसे वो उसे पुकार रही हो। अन्वय ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक बार फिर आंखों के सामने आन्या का चेहरा उभर आया। वो इस वक्त उसी झील के पास बैठी थी। ये देखकर अन्वय ने झटके से अपनी आंखें खोल दी और तुरंत ही चमगादड़ बनकर वहां से उड़ गया। कुछ ही देर बाद वो झील के सामने खड़ा था। झील के पास सफेद चूड़ीवार सूट पहने आन्या खड़ी थी, जिसकी पीठ उसकी तरफ थी। अन्वय पीछे से ही उसे पहचान गया। इतनी रात को उसे वहां देखकर वो थोड़ा हैरान भी हो गया था। उसने उसके पास आते हुए हैरान परेशान निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, आन्या, तुम इस वक्त अकेली यहाँ क्या कर रही हो? कौन हूँ मैं? आन्या ने एकटक झील को देखते हुए ही सवाल किया। उसका सवाल सुनकर अन्वय कुछ कन्फ्यूज हो गया। उसने उसकी बाँह पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, ये कैसा बेतुका सवाल है? तुम नहीं जानती तुम कौन हो? नहीं जानती? तुम बताओ कौन हूँ मैं? क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? कैसे जुड़ी हूँ मैं सागर और सरिता जी की प्रेम कहानी से? क्यों मुझे उनके सपने आते थे? क्यों कोई नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? क्यों उस दिन सब मुझे मारना चाहते थे? क्या पहचान है मेरी, इंसान हूँ या तुम्हारे तरह एक वैम्पायर? उसके इतना कहते ही अन्वय की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसके भाव देखकर आन्या ने आगे कहना जारी रखा, हैरानी हो रही है कि तुमने तो मुझे ये बताया ही नहीं। जब मैंने तुम्हें अपना अधूरा सपना बताया तो तुमने उसको मेरा सपना कहकर भूलने को कह दिया, पर कुछ भी मेरा सपना नहीं था, सब सच था। निहाल इंसान नहीं था, वैम्पायर था। उसे सालों से मेरी तलाश थी क्योंकि वो मुझे तुम तक पहुंचने से पहले मारना चाहता था। उसके भाई विक्रांत को भी मुझे मारना था, पर निहाल का दिल आ गया मुझ पर तो उसने बीच का रास्ता निकाला। मुझे तुमसे दूर रखने के लिए तुमने मुझे अपना बनाने का फैसला ले लिया। उस दिन मैं मर गई थी पर फिर जिंदा हो गई। कैसे? कैसे तुम्हारे माथे का स्पर्श होने पर जो कहानी मैंने अपने सपने में टूटी फूटी सी देखी थी, वो मेरी आंखों के आगे किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसके बाद जब मैं जिंदा हुई तो इंसान नहीं, वैम्पायर थी। मैंने इतने सारे वैम्पायरों को मार दिया और उसके बाद बेहोश हो गई। होश आया तो अपने कमरे में थी। तुमने मुझसे सब झूठ कहा। तुम पहले से जानते थे कि मैं वैम्पायर हूँ। मैं इंसान से वैम्पायर कैसे बनी? देखो, मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सोचा मैंने पर कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे सच सच बता दो, आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? आन्या ने परेशान निगाहों से देखने लगी। अन्वय समझ गया कि अब कुछ भी छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो आन्या को लेकर झील किनारे बैठ गया, जहाँ कभी सागर और सरिता बैठा करते थे। अन्वय ने उसके बाद उसे शुरू से सब बताया। धीरे धीरे उसे अपने सभी सवालों के जवाब मिलने लगे। सब कुछ बताने के बाद अन्वय ने उसकी हथेली को थामते हुए कहा, जो कहानी तुमने अपने सपनों में देखी थी वो सिर्फ कहानी नहीं, हमारा पिछला जन्म था। सागर और सरिता हम ही थे। उस जन्म में हमारा प्यार अधूरा रह गया था, इसलिए हमने फिर से जन्म लिया। यही वजह थी कि पहले दिन ही मेरा दिल तुम्हें देखकर जोरों से धड़क उठा था, क्योंकि भले ही मैंने तुम्हें नहीं पहचाना था पर मेरा दिल तुम्हें पहचान गया था। शायद यही वजह थी कि अनजान होते हुए तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा था। मेरे साथ तुम महफूज महसूस करती थी। मैंने तुम्हें सब बता दिया है। तुम शुरू से वैम्पायर थी, बस बनी तब जब उस दिन तुमने यहाँ मुझे किस किया था। तुम्हारी शक्तियाँ जागृत हो गई थी पर तुम्हें अपने अस्तित्व का भान नहीं था और मैं तुम्हें ये बताना नहीं चाहता था। उस दिन तुम वैम्पायर बनी पर उसके बाद जब होश आया तो तुम्हें कुछ याद नहीं था, तो मैंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया। जब मुझे पता चला था कि मैं इंसान नहीं वैम्पायर हूँ तो इस सच को अपनाने में मुझे बहुत वक्त लग गया था। खुद से ही लड़ रहा था मैं और जो सब मैंने फेस किया उससे लड़ते नहीं देखना चाहता था मैं तुम्हें। अचानक से तुम्हें पता चले कि तुम्हारी अब तक की जिंदगी धोखा थी। तुम वो हो ही नहीं, तुम बाकियों से अलग हो, इसे एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं नहीं चाहता था कि इस सच्चाई की वजह से तुम खुद को भूल जाओ, बस इसलिए तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मैं चाहता था जैसे अब तक तुम बिना किसी फिक्र के खुलकर अपनी जिंदगी जीती आई हो, वैसे ही आगे भी जियो, इसलिए तुमसे सच छुपाया। और कोई वजह नहीं। जब तक तुम्हें नहीं पता था कि मैं तुम्हारी तरह एक वैम्पायर हूँ, तब तक तुम मुझसे दूर भागते रहे। और जब तुम्हें पता चला कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, तो तुमने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया। मतलब अगर मैं वैम्पायर नहीं होती तो तुम मुझे नहीं अपनाते, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह वैम्पायर हूँ, इसलिए तुमने मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने का फैसला किया है।